ओम शांति। संपूर्णता की इस महान मंजिल को प्राप्त करने के लिए हम सभी को बाबा ने संपूर्ण ज्ञान दिया है। क्या है ये संपूर्णता, कैसे इसे प्राप्त किया जाए? जैसे हम इस संसार में आए थे वैसे ही बनकर हमें वापस जाना है। इस महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर हम इस विश्व को एक विशाल नाटक के रूप में देखते हैं। ये संसार परमात्मा की एक अविनाशी रचना है। उसकी रचना अवश्य है परंतु है अनादि और अविनाशी। इसमें हम सभी आत्माएं एक्टर्स हैं। ये शरीर रूपी वस्त्र को पहनकर हम अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। बाबा ने इस विश्व नाटक का गुह्य ज्ञान हम सबको दिया और कहा, जैसे मैं इस विश्व के नाटक को साक्षी होकर देखता हूं वैसे ही तुम भी देखो तो तुम मेरे समान बन जाओगे। सचमुच ये बहुत सुंदर खेल है। यदि खेल की तरह हम इस नाटक को देखें और खेल की तरह ही खेलें तो हम सब कुछ देखते हुए बहुत आनंद का अनुभव करेंगे। किसी भी सीन को देखकर हमारे मन में क्या क्यों के क्वेश्चंस नहीं उठेंगे, क्योंकि हरेक मनुष्य की विवेक शक्ति अपनी अपनी है। हर मनुष्य का दृष्टिकोण अपना अपना है। न जाने कौन किस एंगल से संसार को और दूसरे मनुष्यों को देखता है, परंतु हमें देखना है साक्षी भाव से। डिटैच्ड ऑब्जर्वर बन जाना है हमें, ताकि किसी भी घटना का प्रभाव, किसी भी मनुष्य का प्रभाव हम पर न पड़े। वास्तव में ये साक्षी स्थिति बहुत ही मीठी स्थिति है। यदि हम रोज केवल 2-3 बार शांत बैठकर इस संसार को देखें, सतयुग से कलयुग अंत तक का ये ड्रामा एक फिल्म के रूप में हमारी नजरों के सामने आ जाए, कैसे सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट प्ले कर रही हैं, कैसा सुंदर बना हुआ है ये खेल। सदा ही परमधाम से सृष्टि रंगमंच पर आत्मा रूपी एक्टर्स अपना पार्ट प्ले करने आते रहते हैं। कितनी गुह्यता है इस विश्व की रचना में कि निरंतर मुक्तिधाम से आत्माएं संसार में आएंगी। और क्योंकि जब कोई आत्मा इस धरातल पर पार्ट बजाने आती है तो वो संपूर्ण होती है, पवित्र होती है, सतो प्रधान होती है। इसलिए सदा ही इस संसार को पवित्र और सतो प्रधान आत्माओं का साथ मिलता रहेगा। उनकी उपस्थिति से इस संसार में नैतिकता, चरित्र, अच्छे कर्म, मानवता और कुछ अर्थों में देवत्व भी कायम रहेगा। कितना सुंदर खेल है, हमारे कर्मों के आधार से बना हुआ है। इस विश्व के नाटक में हर एक्टर को जो पार्ट मिला है, सोचो वो क्यों मिला होगा। इसका डायरेक्टर स्वयं ज्ञान का सागर परमात्मा है, त्रिकालदर्शी है, सर्वज्ञ है। उसने हर आत्मा को जो पार्ट दिया है वो उसकी योग्यता के अनुसार, उसके संस्कारों के अनुसार, उसके विचारों के अनुसार, उसमें जो डिग्री ऑफ प्योरिटी है, शक्तियां हैं, उसके अनुसार पाठ दिया है। तो हम इस खेल को रोज साक्षी होकर देखा करें। बैठ जाएं आप शांत में, निश्चित कर लें तीन समय अपनी दिनचर्या में एक एक मिनट के लिए। देखें सभी आत्माएं हैं चमकती हुई ज्योतियां अपने अपने शरीरों में आकर पार्ट प्ले कर रही हैं। किसी का कैसा पार्ट है, किसी का कैसा पार्ट है, क्योंकि आत्माएं भूल गई हैं कि वो एक्टर्स हैं, इसलिए वो देह अभिमान में आ गई हैं। उनमें तेरा मेरा हो गया है, वो इसे अपना समझ बैठे हैं। ये पार्ट है तो रियल, ये कल्पना नहीं है, ये स्वप्न मात्र भी नहीं है, ये मिथ्या भी नहीं है जैसा कि कई फिलोसोफीज में माना गया है। ये ड्रामा विश्व का विशाल नाटक और हम सभी आत्माओं का, एक्टर्स का, हीरो एक्टर्स का इसमें पार्ट प्ले करना, ये रियलिटी है, मिथ नहीं। हम इसको रियल स्वरूप से देखें, पर ज्ञान युक्त होकर देखें और इसका आनंद लें, बहुत मीठी स्थिति हो जाएगी। तीन बार यदि कुछ दिन तक ये अभ्यास कर लिया जाए तो अनुभव होगा कि संसार की कोई घटना और दुर्घटना, हमारे चार ओर का वातावरण, आत्माओं का कैसा भी पार्ट, चाहे वो आपके परिवार में ही क्यों न हो, आप पर बुरा प्रभाव नहीं डाल रहा है। हमें संपूर्ण बनने के लिए साक्षी भाव अपनाना परम आवश्यक है। एक बहुत सुंदर महावाक्य सभी याद करें और उसको प्रयोग करके देखें अपने जीवन में। स्वयं भगवान ने कहा, शिव बाबा ने कहा, यदि तुम साक्षीपन की सीट पर सेट रहो तो जीवन में आने वाली सभी समस्याएं इस सीट के नीचे दबकर नष्ट हो जाएंगी। कितनी गुह्य बात है। विचार भी करना है कि ऐसा कैसे हो जाएगा। यदि हम साक्षी भाव में स्थित रहेंगे तो हमारी संकल्प शक्ति संपूर्ण रूप से एकाग्र रहेगी, हमारे मन में विकल्पों का, व्यर्थ संकल्पों का तूफान नहीं चलेगा और ये संकल्प शक्ति स्वतः ही हमारी समस्याओं को नष्ट करती रहेगी। तो साक्षी भाव हमें संपूर्णता की ओर ले चलेगा। आप रोज इसका प्रयोग करें, समस्याओं में उलझने की बजाय, समस्याओं के बारे में क्या क्यों के प्रश्न करने की बजाय साक्षी होकर देखें क्या होता है। कम से कम एक्सपेरिमेंट तो कर लेंगे, होता क्या है साक्षी भाव से। कई लोगों ने साक्षी भाव का अर्थ ये भी समझ लिया है कि शायद हमें कुछ करना नहीं है, साक्षी रहो कुछ करो नहीं, साक्षीपन का ये अर्थ नहीं है। साक्षीपन का अर्थ है हम एक्टर्स हैं, हमें अपना पार्ट प्ले करना है, अच्छे से अच्छा प्ले करना है, अपने पार्ट को भी साक्षी होकर देखना है और दूसरों के पार्ट्स को भी साक्षी होकर देखना है, अपने कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारियां साक्षी होकर निभानी है, जैसे हम पार्ट प्ले कर रहे हैं। साक्षी होने का अर्थ है हम पार्ट प्ले कर रहे हैं, रियल में हम जिम्मेदार हैं। ये भावना मनुष्य को भारी कर देती है, बाबा जिम्मेदार है, ये पार्ट उसने हमें दिया है, हम जिम्मेदारी को हंसते हंसते, खेलते खेलते, खेल की तरह पूरा करेंगे, ये साक्षी भाव है। इस ओर हम सभी चलें। विश्व ड्रामा के इस विशाल ज्ञान के आधार से हम अपने चित्त को बिल्कुल निर्संकल्प कर सकते हैं, व्यर्थ को समाप्त कर सकते हैं। कुछ चीजों पर हम दृष्टि डाल रहे हैं, सभी ध्यान दें, इस ड्रामा के ज्ञान को हम अपने जीवन में कैसे यूज करें। सबसे पहले हम जानते हैं सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट प्ले कर रही हैं, सबका अपना अपना निश्चित पार्ट है, इसलिए हमें किसी के लिए भी परचिंतन की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा परचिंतन उनके पार्ट को बदलेगा नहीं। हम भी एक्टर हैं। दूसरी बात, हमें अपने पार्ट को एंजॉय करना है, दूसरे भी एक्टर हैं तो मैं भी एक्टर हूं। दोनों बातों पर ध्यान देना है, दूसरों के पार्ट को भी एंजॉय करें, अपने पार्ट को भी एंजॉय करें। इस ड्रामा में बहुत गहरा एक राज शिव बाबा ने समझाया है। 5000 वर्ष के इस नाटक में एक घटना एक ही बार होती है। जो सीन एक बार आ गया वो 5000 वर्ष में दोबारा नहीं आएगा। ध्यान दें कैसे ये ड्रामा गतिमान है, फिल्म चलती है, निरंतर उसमें गति रहती है। ये तो नहीं ना एक सीन ठहर जाता है, गतिमान रहता है ड्रामा, निरंतर सीन बदलते रहते हैं, चाहे वो 10 सेकंड में बदलें या 1 मिनट में बदलें। हो सकता है कोई सीन 1-2-3 मिनट भी रहता हो, पर सीन बदलते रहते हैं। हम भी इस ड्रामा के सीन के अनुसार अपने मेंटलिटी को, अपने विचारों को, अपने दृष्टिकोण को उसी प्रवाह के साथ बदलते चले। जैसे ड्रामा में हर सीन में गति है, हम भी अपने विचारों को गतिमान बनाएं, ठहराए नहीं, एक ही संकल्प को लेकर बैठ न जाएं, पकड़ न ले कुछ, होल्डिंग नेचर हमारी न हो जाए और आगे चलें। ये ड्रामा संपूर्ण रूप से एक्यूरेट है, बहुत सुंदर बात है। कई लोग कहा करते हैं हमारे जीवन में ये घटना बहुत बुरी हो गई, क्या इसे बदला नहीं जा सकता, हम कुछ ऐसा पुरुषार्थ कर सकते हैं जो इस बुरी चीज को, इस दुर्घटना को, जीवन में आए हुए दुखों के इन पहाड़ को हम हटा दें, अगले कल्प में हमारे सामने ये ना आए। सोचने की बात है। फिल्म में भी एक सीन दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, कोई भी सीन अलग तो नहीं होता, इंडिपेंडेंट तो नहीं होता। कहानी प्रारंभ होती है, हर सीन एक दूसरे से जुड़कर कथा आगे बढ़ती है। ये ड्रामा भी ऐसा ही बना हुआ है, इसमें अरबों एक्टर्स हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े रहते हैं हम एक्टर्स एक दूसरे से? कर्म के आधार पर, संकल्पों के आधार पर, भावनाओं के आधार पर। तो जो कुछ भी सीन हमारे सामने आता है या आया है वो उससे पास्ट के कर्मों का ही परिणाम होता है। हो सकता है हमने वो कर्म 1000 वर्ष पूर्व किया हो, परिणाम कल हमारे सामने आ गया हो। हो सकता है वो कर्म हमने 6 दिन पहले ही किया हो, परिणाम कल हमारे सामने आ गया हो। कुछ भी अकारण नहीं हो रहा है, इसलिए जहां तक पास्ट को बदलने की बात है, हम सब जानते हैं पास्ट में कोई भी नहीं जा सकता, कोई वापस हो ही नहीं सकता। सोच ले आप, क्या किसी में शक्ति है कि अब से 1 सेकंड पहले जो कुछ हो गया उसको न होने दे? वो तो हो गया, अब हमें आगे की ओर देखना है, पीछे की ओर नहीं देखना है। जो व्यक्ति बार बार पीछे मुड़कर देखता है वो आगे नहीं बढ़ पाता, उसकी गति धीमी हो जाती है। इसलिए ड्रामा का ज्ञान हमें संदेश दे रहा है, निरंतर आगे बढ़ते चलो। ये ड्रामा क्यों बदलेगा? ये तो बहुत सुंदर बना हुआ है, बहुत एक्यूरेट बना हुआ है, परफेक्ट है, इसमें कहीं किसी परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है। यदि हमें इसमें कुछ गलत दिखाई देता है तो ये हमारे अपने दृष्टिकोण की गलती है, ये हमारे अपने ज्ञान कम होने की बात है। यदि हम संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लें तो हम अपने चित्त को शांत कर देंगे, जो कुछ हो गया, जो कुछ हो रहा है वही परम सत्य है, असत्य कुछ हो ही नहीं रहा। बल्कि हम ये विचार अपने अंदर रखें, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो गया है वही होना चाहिए, क्योंकि वो अंतिम सत्य है। ये बात हमारे चित्त को शांत करती है। क्यों हो रहा है? इस उलझन में हमें जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि क्यों हो रहा है। हमने तब तो ये नहीं सोचा था जब हम उस तरह के कर्म कर रहे थे कि हम ये गलत कर्म क्यों करें। हमने तब तो कुछ नहीं सोचा, पाप कर्मों का आनंद लिया था, बड़ी खुशी खुशी से दूसरों को कष्ट पहुंचाए थे, दूसरों को दुखी होता देख हम बहुत खुश होते थे। जब उसका परिणाम हमारे सामने आया तब हम परेशान क्यों, तब हमारे मन में क्या क्यों के क्वेश्चंस क्यों। जैसे हमने कर्म खुशी से किया वैसे उसका फल भी खुशी से प्राप्त कर ले, भोग ले, उसमें कुछ भी परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं। तो ये ड्रामा संपूर्ण रूप से सत्य है, इस सत्य को नकारा नहीं जा सकता। और आगे चलें, इस ड्रामा का हर सीन पूरी तरह कल्याणकारी है क्योंकि इसका रचने वाला परमपिता कल्याणकारी है। हम इस बात को अपने अंतर में समाकर अपने मन में उठने वाली दुविधाओं को समाप्त करें, व्यर्थ संकल्पों के तूफान को शीतलता में बदल दें। जो कुछ हो रहा है उसमें हमारा कहीं ना कहीं कल्याण छुपा हुआ अवश्य है, वो आज चाहे हमारी समझ में आए या ना आए कल अवश्य आ जाएगा। आप देख सकते हैं आपके इस जन्म में पूर्व काल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई होंगी जो आपको अप्रिय हैं, जिनको आपने अच्छा नहीं समझा, जिनके लिए आप सोचते हैं सोचते थे ये क्यों हो रही हैं, ये ना हो तो अच्छा होगा, परंतु बाद में आपने चलकर देखा होगा, अनुभव किया होगा कि जो कुछ हुआ उसमें ही कल्याण था। यदि वो बात अब तक भी हम आपकी समझ में ना आई हो तो उसे समझने का प्रयास करें, हर अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण छुपा हुआ है, हर घटना हमें उस ओर ले जा रही है जो हमारी अंतिम मंजिल है। बहुत सूक्ष्म रहस्य है ये, हमें अपनी उस अंतिम मंजिल को भी पहचान लेना चाहिए। कभी कभी वहां तक पहुंचने में हमें कष्ट होने लगता है, हम सोचते हैं हम इतने अच्छे कर्म कर रहे हैं, हमारे पास इतना अच्छा ज्ञान है, हम इतने अच्छे अच्छे पुण्य करते हैं, दूसरों को सुख देते हैं, फिर भी ये सब क्यों हो रहा है, हमें लगता है शायद ये कल्याणकारी नहीं है। जरा अपनी दृष्टि को विशाल बनाएं तो स्पष्ट हो जाएगा कि सब कुछ कल्याणकारी है, क्योंकि हम वर्तमान में कल्याण देखना चाहते हैं, हमारे मन में एक एक्सपेक्टेशन रहती है ऐसा होना चाहिए, तो हमें लगता है ऐसा नहीं हुआ ये ठीक नहीं हुआ, ये कल्याणकारी नहीं है, शिव बाबा भी हमें मदद नहीं कर रहा है, उसे मदद करनी चाहिए। परंतु नहीं, वो हमें मदद करता है, लेकिन वो मदद हमें उस तरह नहीं करता जिस तरह हम मदद चाहते हैं, वो मदद हमें उस तरह करता है जिसमें वो हमारा लंबे काल का कल्याण देखता है। क्षणिक मदद, आज मदद हुई कल फिर हम समस्याओं में उलझ जाएं, फिर हम भगवान से मदद मांगने लगें, वो ऐसा नहीं चाहता। वो ये चाहता है मैं इन्हें ऐसी मदद कर दूं जो लंबे काल इन्हें मेरी मदद की जरूरत ही न पड़े, ये स्वयं में समर्थ बन जाएं। तो ये ड्रामा पूरी तरह से कल्याणकारी है। मनुष्य को अपने जीवन में पास्ट की कई बातों का चिंतन रहता है, कईयों के तो जीवन को पास्ट ने बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है, वो पास्ट में जीते हैं उसका ही चिंतन करते हैं, निराश रहते हैं, पास्ट की घटनाओं से उनका चित्त उदास रहता है, उनकी उमंग उत्साह नष्ट हो जाती है। पास्ट इस ड्रामा में पास्ट हो गया, जो कुछ हो गया वो दोबारा नहीं होगा, इसलिए पास्ट को भूल जाना ही कल्याणकारी है। पक्का कर दे अपने मन में, पास्ट की किसी भी कड़वाहट से हमें अपने उज्जवल भविष्य को कड़वाहट से नहीं भरना है, विषैला नहीं करना है। पास्ट यदि हमारा कड़वा था उससे हम कुछ सीख लें और भविष्य को मीठा बना दें, ये सब संभव है। इसलिए ड्रामा का ज्ञान हमें संदेश दे रहा है कि पास्ट में न जियो, वर्तमान में जियो। वर्तमान तुम्हारा बहुत सुखद है, देखो तो सही स्वयं भगवान हाथ में विजय का झंडा लेकर तुम्हारे समक्ष विराजमान है। कहता है बच्चे मेरे पीछे पीछे आ जाओ, तुम अपने अंतिम लक्ष्य पर पहुंच जाओगे, मेरा हाथ पकड़ लो। माया तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ पाएगी, समस्याएं तुम्हें रोक नहीं पाएगी, मनुष्यों की ईर्ष्या द्वेष तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाएगी। ध्यान रखें, हम इस ड्रामा में सभी को जो अपना अपना पार्ट मिला है उनकी योग्यताओं के आधार से मिला है। हमें उनसे ईर्ष्या करने की आवश्यकता नहीं, हम भी यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो दूसरों को देखकर आगे नहीं बढ़ेंगे, अपनी योग्यताओं के आधार से आगे बढ़ेंगे। इसलिए संकल्प कर लें, दूसरों को देखकर ईर्ष्या द्वेष के वश होकर न तो हम किसी की टांग खींचेंगे, न किसी के बारे में बुरा बोलेंगे। यदि हमें आगे बढ़ना है तो अपने बल पर आगे बढ़ेंगे। दूसरे भी हमें क्यों आगे बढ़ाएं, कोई आगे बढ़ाने में हमें मदद क्यों करे, क्यों न हम इतने समर्थ हो जाएं कि अवसर अपॉर्चुनिटीज हमारा इंतजार करती रहें, वो हमारे पीछे भागे, हमें उनके पीछे न भागना पड़े, और आगे बढ़ाएं इस बात को। बहुत सुंदर बात, ये ड्रामा में सब कुछ पूर्व निश्चित है, सब कुछ फिक्स है, भविष्य प्रीडिटरमाइंड है, उसको बदला नहीं जा सकता। परंतु क्योंकि हमें भविष्य का ज्ञान नहीं है, इसलिए हमें पुरुषार्थ करना है। कोई ये कहे कि भविष्य तो निश्चित है, फिर हम पुरुषार्थ क्यों करें, कर्म क्यों करें? नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं है, हम एक्टर्स हैं, हमें जो जो पार्ट सामने आएगा उसको प्ले करना ही है। मान लो आप एक ऑफिस में काम करते हैं, आपको रोज 10 बजे ऑफिस में पहुंचना होता है, रोज पहुंचना है। क्या आप ये सोचेंगे कि रोज ही तो पहुंचना है, फिर चलें क्यों घर से? आप पहुंचेंगे ही तब जब चलेंगे, क्योंकि हम एक्टर हैं, हम निरंतर एक्शन करेंगे, हमें निरंतर एक्ट करना है। इसलिए ये कहना गलत है कि भविष्य निश्चित है तो हम कार्य क्यों करें। क्योंकि भविष्य निश्चित है इसलिए हमें कार्य करना है उस निश्चित स्थिति तक पहुंचने के लिए। मान लो एक विद्यार्थी है, उसको एक बहुत अच्छा भविष्यवक्ता बता देता है कि तुम्हारे 99% मार्क्स आएंगे। शायद आप सोचे मैंने ज्यादा बोल दिया है, नहीं, आजकल इतने मार्क्स भी आ रहे हैं बच्चों के। अब वो बच्चा सोच ले कि मेरे तो 99% आएंगे ही, मैं मेहनत क्यों करूं, एग्जाम ही क्यों दूं? तो हम जानते हैं कि यदि वो एग्जाम नहीं देगा उसके नंबर नहीं आएंगे। तो जो मंजिल है हमारी, जो फिक्स है, उस अनुसार कर्म करना, पुरुषार्थ करना भी फिक्स है, हमें वो करना है। क्योंकि हम एक्टर हैं, हम कर्म करेंगे तो ही वो फल हमें प्राप्त होगा। इस तरह हम ड्रामा को निश्चित जानते हुए निश्चिंत हो जाएं। आपके सामने कोई बड़ी समस्याएं हैं, आपका बच्चा बीमार है, आपको कोई भयानक बीमारी ने ग्रस्त कर लिया है, और कोई बड़ी चीज आपके सामने खड़ी है, आप इस सत्य को स्वीकार करके कि फ्यूचर निश्चित है, निश्चिंत होकर प्रयास करें, बीमारी को ठीक करने का प्रयास करें, दवाई लें, जो समस्याएं हैं उनका समाधान करें, इस विश्वास के साथ कि निश्चित है ये समस्याएं ठीक हो जाएंगी। ये निश्चित नहीं है कि कुछ ठीक नहीं होगा, कई लोग ऐसा गलत समझ लेते हैं। ऐसे सहज भाव से यदि आप पुरुषार्थ करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो निश्चित भविष्य को जानकर हम भविष्य के बारे में निश्चिंत होकर अपने कदम तेजी से आगे बढ़ाएं। क्योंकि बहुत लोग तेज पुरुषार्थ करते हैं, जिस मंजिल को पाना है उसकी ओर तेजी से भी चलते हैं, परंतु साथ में निराश रहते हैं, नेगेटिव विचार रखते हैं कि पता नहीं ये होगा या नहीं, सफलता मिलेगी या नहीं, हम ये काम कर पाएंगे या नहीं, ये व्यक्ति हमें सहयोग देगा या नहीं, ये संकल्प गलत है। आप निश्चित ही ये समझो कि ये होगा तो आपके कदम उसी ओर आगे चलेंगे। और आगे चलें इस ड्रामा के विशाल ज्ञान को ध्यान में रखते हुए। ड्रामा में एक सीन आ रहा है और जा रहा है, हम उसको जाने दें, उसको पकड़ कर न रखें। बहुत सुंदर अनुभव होंगे जीवन में। तो हम एक्टर्स हैं, हमें अपने पार्ट को एंजॉय करना है। इतना ही नहीं, हम अपने को ये स्वमान दे दें कि हम हीरो एक्टर्स हैं, हमें अच्छे से अच्छा पार्ट बजाना है। देखिए कितना सुंदर ये खेल है कि जब इस संसार का अंत आया है, जब इस विश्व के ड्रामा की बिल्कुल अंतिम सीन हमारे सामने है, तो भगवान स्वयं हमारी यात्रा में हमारा साथी बन गया है। जो सुप्रीम डायरेक्टर है वो हमारे साथ चल दिया है ना। आनंद लें आप इस सीन का। इसी सीन का तो संसार के मनुष्यों को ज्ञान नहीं है, लेकिन जिनको इस चीज का ज्ञान है कि स्वयं भगवान कल्प के अंत में, इस ड्रामा के अंत में हमारे समक्ष उपस्थित हो गया है, उनके आनंद के क्या कहने। हम जानते हैं कि ड्रामा का जब अंत होता है, सभी एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं, कौन कौन हीरो एक्टर थे उनका परिचय हो जाता है। इस ड्रामा का अंतिम सीन भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। चारों युगों के जो हीरो एक्टर्स हैं, सभी धर्मों के जो हीरो एक्टर्स हैं, संस्थापक हैं, मुख्य कार्यकर्ता हैं, लीडर्स हैं, वो सब वर्ल्ड की इस स्टेज पर पुनः प्रकट हो जाएंगे, यानी उनकी प्रत्यक्षता हो जाएगी और वो सीन बहुत सुंदर होगा। तो ड्रामा के एक बहुत सुंदर दृश्य की ओर हम सब चल रहे हैं। बाबा हमें रोज याद दिलाते हैं कि बच्चे ये विश्व का नाटक अब पूरा होने जा रहा है और तुम्हें घर चलना है। मैं आया हूं तुम्हें मुक्ति धाम में ले जाने के लिए, अब तैयार हो जाओ, क्योंकि जैसे तुम आए थे, संपूर्ण आए थे, भरपूर आए थे, खाली हाथ नहीं आए थे, सब खजानों से संपन्न आए थे, वैसे ही भरपूर होकर, संपूर्ण होकर तुम्हें वापस लौटना है। तो तैयार हो जाएं हम सब अपनी वापसी यात्रा के लिए, अपनी रिटर्न जर्नी के लिए। अब हमारा जो असली घर है ब्रह्मलोक, मुक्ति धाम, उसकी हमें खींच होनी चाहिए कि अब हम वहां जा रहे हैं। अब फिर से हम शांति के उस धाम की, परम शांति को अनुभव करेंगे, जहां हम कुछ समय रहे थे, जो हमारा मूल घर है, मूल वतन है। तो आओ हम सभी ड्रामा के इस विशाल ज्ञान के आधार से निश्चिंत हो जाएं, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाएं, अपने घर में बैठकर एक बार आप विचार करें, अपने परिवार के सभी सदस्यों को देखें, ये सभी आत्माएं अपने अपने शरीरों में प्रवेश करके एक्ट कर रही हैं, ये सब अच्छे एक्टर्स हैं। हमारा घर एक सुंदर एक्टर्स का घर है। एंजॉय करें इस संकल्प को। जैसे भी मेंबर आपके घर में हैं, उनको यदि आप इस दृष्टि से देखेंगे तो आपको अनुभव होगा उनमें भी परिवर्तन होने लगा है। तो ड्रामा का अंतिम सीन आ गया है, हमें ड्रामा का संपूर्ण ज्ञान हो गया है, आदि मध्य अंत का ज्ञान हो गया है। आदि में हम संपूर्ण पवित्र देवता थे, अंत में हमें फरिश्ते बनकर वापिस लौटना है, संपूर्ण बनकर वापिस लौटना है। इस ड्रामा के ज्ञान को बार बार स्मृति में लाएं। ये 8-10 बातें जो मैंने आपके समक्ष रखी, आप इन्हें नोट कर लें, रोज पढ़ लिया करें और रोज उनका जीवन में प्रयोग करने का ध्यान रखें, प्रैक्टिस करें, जिस तरह का भी व्यर्थ संकल्प आपके मन में आए ड्रामा के ज्ञान के द्वारा उसको समाप्त कर दें। फाइनल बात आपको याद दिला दूं, बाबा ने कहा जो कुछ हो रहा है वो कल्प पहले भी हुआ था, नथिंग न्यू। आप इस नथिंग न्यू के मंत्र से जीवन में आगे बढ़ते चलें, याद रखें कल्प पहले भी हमने माया पर विजय पाई थी, अब भी हमें माया पर विजय प्राप्त होनी ही है, ये निश्चित है, हमारी जीत निश्चित है। हम इस ड्रामा के हीरो एक्टर्स हैं, स्वयं भगवान हमें इस ड्रामा में साथ दे रहा है, उसने हमें अच्छे से अच्छा पार्ट दिया है। ये संकल्प कर लें, चाहे आपको कैसा भी पार्ट मिला है, आप जरा ये संकल्प करके देखें, मेरा पार्ट बहुत ही सुंदर है। इस तरह अपने को निर्संकल्प रखते हुए योग युक्त होने का अभ्यास करें, क्योंकि फाइनली निरंतर योग युक्त होने से ही हमें संपूर्णता की प्राप्ति होगी, हम संपूर्णता का संपूर्ण सुख ले पाएंगे। ओम शांति।